ശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീയദ്വൈതഗദാധര ശ്രീവാസദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ ജയ നിത്യാനന്ദ ജയദ്വൈതചന്ദ്ര ജയ ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ ജയ നിത്യാനന്ദ ജയദ്വൈതചന്ദ്ര ജയ ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ ജയ നിത്യാനന്ദ ജയദ്വൈതചന്ദ്ര ജയ ഗൗരഭക്തവൃന്ദ चैतन्यचरितामृत अंतलीला अध्याय चार श्लोक क्रमांक 80 कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन लुप्त तीर्थ उद्धार आर वैराग्य शिक्षण कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन लुप्त तीर्थ उद्धारार वैराग्य शिक्षण कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन लुप्त तीर्थ उद्धारार वैराग्य शिक्षण माताजी कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन कृष्ण भक्ति कृष्ण के प्रति प्रेममयी सेवा कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम सेवा सेवा प्रवर्तन की स्थापना लुप्त तीर्थ विलुप्त तीर्थ स्थानों का उद्धार पुनरुद्धार आर और वैराग्य शिक्षण संन्यास आश्रम पर उपदेश अनुवाद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तुम्हें कृष्ण भक्ति बतलानी होगी कृष्ण प्रेम अनुशीलन के केंद्र स्थापित करने होंगे लुप्त तीर्थ स्थलों का उद्धार करना होगा तथा लोगों को शिक्षा देनी होगी कि संन्यास किस तरह ग्रहण किया जाए। तो सनातन गोस्वामी के तिरुभाव महोत्सव पर आज चैतन्य चरितामृत के अंतलीला के इन कुछ श्लोकों पर हम चर्चा कर रहे हैं। अध्याय चार में सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से उपदेश वाराणसी में प्राप्त 2 महीने के लिए करने के पश्चात फिर चैतन्य महाप्रभु के साथ कुछ समय बिताने के लिए जगन्नाथपुरी की ओर आते हैं। मार्ग पर उनको कोई अजीबोगरीब त्वचा का रोग हो जाता है और उस रोग के कारण उनके पूरे शरीर पर विविध प्रकार के फोड़े आ जाते हैं और सनातन गोस्वामी पाद को लगने लगता है कि उनका ये देह भगवत भक्ति महाप्रभु की सेवा के लिए अयोग्य हो गई। और सनातन गोस्वामी के हृदय में बड़ी निराशा और बड़े दुर्बलता की भावना आ जाती है और वो बड़े हतोत्साहित अनुभव करने लगते हैं। तो ये सनातन गोस्वामी पाद जो कि भगवान के अंतरंग पार्षदों में से एक हैं, कालेन वृंदावन केली वार्ता लुप्ते ताम ख्यापयतुम विशिष्य कृपामृतेना अभिशिषेश्च देवस्तत्रैव रूपं च सनातनं च, जो कालक्रम से भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि वृंदावन में अपने निजी अंतरंग सदस्यों के साथ जो लीला प्रसारण किया द्वापरयुग के अंत में, उसकी महिमा काल के विविध प्रकार के आक्रमण से लगभग नष्ट हो गई थी। भगवान काल के प्रवर्तक हैं, लेकिन फिर भी भगवान निरपेक्ष होने के कारण वो उस काल शक्ति को अपने ही लीलाओं को लुप्त करने का एक अवसर देते हैं और अनुमति देते हैं। इस बात को, इस सिद्धांत को ध्वनित करने कि इस ब्रह्मांड में न्याय निरपेक्ष है और सभी के प्रति एक समान लागू किया जाएगा और वो मेरे ऊपर भी मैं लागू करवाता हूँ, और इसलिए यादवी कलह के माध्यम से भगवान ने अपने ही निजी प्रेमी द्वारका वासियों को एक दूसरे के माध्यम से मरवाया। इस निर्मम रूप से भगवान ने अपने ही पारिवारिक जनों का हत्या कराया, जो सामान्य इस जगत का सबसे बड़ा अत्याचारी पापी मनुष्य भी अपने परिवार के साथ न करे। ये है हमारे कृष्ण। तो इसलिए भगवान ने वृंदावन की महिमा को 500 वर्ष तक आच्छादित कर दी। महमूद गजनी ने आक्रमण किया वृंदावन के ऊपर, मथुरा के ऊपर। भगवान के तिरुभाव के पश्चात, श्री कृष्ण के तिरुभाव के पश्चात उनके पौत्र वज्रनाभ ने अलग अलग विग्रहों की स्थापना की, वृंदावन की महिमा को और चार चांद लगा दिए। केशव जी के विग्रह की स्थापना की, मदन मोहन गोविंद देव और गोपीनाथ जी के विग्रहों की स्थापना की। उत्तरा माता की सहायता से उन्होंने ये कन्फर्म कराया कि जो भगवान के विग्रह हैं ये भगवान के ही हूबहू हैं। और इतना सब करने के पश्चात जब संपूर्ण ब्रज भगवान श्री कृष्ण के भक्ति भाव से गूंज उठा, तब हजार वर्ष पूर्व महमूद और गजनी ने जब आक्रमण किया तो विग्रहों की रक्षा करने के लिए उन सभी विग्रहों को वहीं पर वृंदावन के अलग अलग स्थान पर धरती के नीचे समाविष्ट करके लुप्त कर दिया। और तब केशव जी का जो विशाल मंदिर था उसको भी समाप्त किया, नष्ट किया। और इस प्रकार उस आक्रमण के दहशत के पश्चात 500 वर्ष तक वृंदावन मानो एक जंगल सा प्रतीत होने लगा। वहाँ की भक्ति की महिमा लोग नहीं समझ रहे थे और कई पीढ़ियों के पश्चात लोग भूल भी गए कि यहाँ पर कोई इस प्रकार की तीर्थ स्थली थी। ब्रजभूमि की अवस्था बड़ी भयावह हो गई थी। और तब श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य 1486 में हुआ और श्री चैतन्य महाप्रभु अपने ही द्वापर युग के अंत में किए गए उन लीलाओं को प्रसारण करने के लिए संकल्पबद्ध होकर आए। और उन्होंने 24 वर्ष की आयु में मकर संक्रांति के दिन संन्यास लिया। तो संन्यास लेने के समय चैतन्य महाप्रभु के मन में केवल एक ही योजना थी, एक ही प्लान था, एक ही विचार था, एक ही संकल्प था कि संन्यास के तुरंत पश्चात जीवन पर्यंत मैं वृंदावन ब्रजभूमि में निकालूंगा और वृंदावन का पुनरुद्धार जीर्णोद्धार करूंगा, वृंदावन की महिमा को पूर्व की भांति पुनर्स्थापित करूंगा। केवल इस योजना से महाप्रभु ने संन्यास लिया था। तो महाप्रभु के संन्यास के समय के संकल्प का बहुत अधिक विज्ञापन लोग नहीं करते, लेकिन हमको समझना चाहिए कि महाप्रभु के मन में अन्य कोई विचार नहीं था, परात्म मात्र परात्मनिष्ठा मात्र वेश धारण मुकुंद सेवाएं होए संसार तारण। मुकुंद की सेवा करने के लिए केवल परात्मनिष्ठा, केवल इस निष्ठा भाव से कि ब्रजभूमि वृंदावन में किस प्रकार ब्रजवासी सेवा करते हैं, वैसे ही मुझे अब ब्रजभूमि में जाकर इन सभी तीर्थ स्थलों का उद्धार करना है। इस भाव से महाप्रभु संन्यास लेकर फिर कटवा से निकले। तब नित्यानंद प्रभु ने उनको पथभ्रष्ट करके फिर पुनः शांतिपुर में पहुंचाया और शांतिपुर में सच्ची माता ने महाप्रभु से निवेदन किया कि अगर आप वृंदावन में जाकर रहोगे तो आप हमसे बहुत दूर हो जाओगे और आपके इस विरह की पीड़ा को मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। और इसलिए वो कहने लगी कि अगर विश्वरूप के जैसे आपने किया, हाँ विश्वरूप सम न करिह निठुराए, विश्वरूप के समय समान आप भी अगर कठोर हृदय धारण करके हमेशा के लिए वृंदावन में बस गए तो फिर मैं समाप्त हो जाऊंगी। और इसीलिए सच्ची माता ने कहा, बाचारे निमाय, तुम मेरे बच्चे हो और मैं चाहती हूँ कि मैं निरंतर आपका दर्शन करती रहूँ। और तब महाप्रभु ने कहा कि ये देह आपके द्वारा ही पालित है, आप जैसा बताओगे मैं वैसे ही करूँगा। तब सच्ची माता ने उनको आदेश किया कि आप जगन्नाथपुरी में निवास बनाओ। तब महाप्रभु ने संन्यास का, वैराग्य का जो मूलभूत सिद्धांत है उसको ध्वनित किया। वैराग्य अर्थात वस्त्रों का तिरस्कार नहीं, किसी ग्रह वस्तु का तिरस्कार नहीं, संबंधों का तिरस्कार नहीं। वैराग्य और संन्यास का अर्थ है अपने बनाई गई योजनाओं का तिरस्कार, अपने बनाई गई विभिन्न प्रकार के विचारों का, मतों का तिरस्कार। अर्थात महाप्रभु जिस संकल्प बद्ध धारणा के साथ संन्यास लिए थे कि संन्यास के बाद केवल वृंदावन में ही बसना है, इतने बड़े संकल्प को महाप्रभु ने तिलांजलि दे दी। इसलिए वो संन्यास शिरोमणि है। अब महाप्रभु ने तो संकल्प ले लिया कि अब मैं वृंदावन में नहीं बसूंगा। केवल महाप्रभु गए 2 महीने के लिए और 2 महीने के प्रवास के पश्चात फिर बलभद्र भट्टाचार्य के आग्रह से फिर वहां से निकले और तब महाप्रभु आए प्रयाग। रूप गोस्वामी को उन्होंने शिक्षा दी, फिर आए वाराणसी और उन्होंने वहां पर उनको, अपने सनातन गोस्वामी पाद को शिक्षा दी। और तब सनातन गोस्वामी को शिक्षा देने के पश्चात महाप्रभु जगन्नाथपुरी आ गए और जगन्नाथपुरी आने के पश्चात महाप्रभु लगभग 1516 के फरवरी में जगन्नाथपुरी आ गए और 1534 जब उन्होंने अपनी लीला समाप्त की तब तक 18 वर्ष तक महाप्रभु जगन्नाथपुरी में ही लॉकडाउन हो गए। आज हम लोग ये सुनकर घबरा जाते हैं कि हम लोगों का यहाँ वहाँ हिलना बंद हो गया, लेकिन महाप्रभु कहीं हिले नहीं उसके बाद, एक ही स्थान पर। और वहाँ पर भी मूलभूत गंभीरा से जो जगन्नाथ का मंदिर और वहाँ से सिद्ध बकुल हरिदास ठाकुर को मिलना और समुद्र, बस ये 4-5 स्थान में ही महाप्रभु लगे रहे। और अधिकांश घंटे तो महाप्रभु उस गंभीरा के अपने निजी कक्ष में रहते थे जिसका दर्शन हम में से अधिकांश लोगों ने किया है। तो चैतन्य महाप्रभु लॉकडाउन के आचार्य हैं। सबसे पहला इतिहास का लॉकडाउन शायद उन्होंने ही किया कि किस प्रकार उस छोटे से कमरे के अंदर महाप्रभु घंटे घंटे रहते थे। इस बात को बताने के लिए कि इस महामंत्र के अंदर इतनी शक्ति है कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सुख केवल इस महामंत्र के अंदर खोजकर टटोलकर आप ढूंढ निकाल सकते हो। केवल बिना विचार के विचरण करने में कोई लाभ नहीं। इसलिए अब जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आ गए और महाप्रभु ने विचार किया कि चलो, माता ने तो कह दिया कि हम वृंदावन नहीं जा सकते, तो फिर हमारे उस वृंदावन की योजना को कौन पूर्ण करेंगे। तो महाप्रभु ने रूप और सनातन गोस्वामी को अपने इस योजना को संपन्न करने के लिए नियोजित किया, पहले ही जाके उनको मिल लिए और उनको दीक्षा दे दी। आज ही होइते दुहार नाम रूप सनातन, दैन्य छाड़ तोमार दैन्य फाटे मोरमन। और तत्पश्चात महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए, तब महाप्रभु वहाँ पर मिले वेंकट भट्ट को। वेंकट भट्ट का छोटा सा बेटा उस समय महाप्रभु के दर्शन करके बड़ा कृतार्थ हो गया। तब महाप्रभु ने अपना महाप्रसाद उनको खिलाकर उनको भी तैयार कर दिया भविष्य के लिए। फिर महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को तैयार किए, हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार के पुत्र। फिर महाप्रभु जब लक्ष्मीप्रिया के साथ विवाहित थे, तब उस समय वो बांग्लादेश गए थे और बांग्लादेश में जाकर महाप्रभु ने तपन मिश्रा से भेंट की और तपन मिश्रा को वहाँ से आदेश किया कि आप वाराणसी जाइए और वाराणसी जाकर विश्वनाथ मंदिर के पुजारी बनिए। तपन मिश्रा को इसका कनेक्शन समझा नहीं, वो चले गए। तपन मिश्रा के बाद में पुत्र बने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो वाराणसी के जो पुजारी ब्राह्मण होते, वो सभी राजपूत राजाओं के गुरु होते, इसलिए महाप्रभु जानते थे कि वृंदावन को पुनर्निर्माण करने के लिए राजपूत राजाओं के राजनीति और उनके धन की आवश्यकता पड़ेगी, धरती और जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, उनकी सहायता के बिना हम ये नहीं कर सकते। इसलिए महाप्रभु ने उस समय रघुनाथ भट्ट के ऊपर भी बहुत प्रभाव किया। और जब महाप्रभु वाराणसी में रहते थे, तब वही रघुनाथ भट्ट महाप्रभु की प्रतिदिन पाद सम्मान करते थे। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन सभी लोगों को तैयार किया। हाँ, केवल जीव गोस्वामी बड़े छोटे थे और इतना महाप्रभु उनके साथ संपर्क नहीं कर पाए, लेकिन इन अन्य पांच गोस्वामियों के संपर्क में आकर जीव गोस्वामी वृंदावन में सबसे आखिरी आए। तो रूप और सनातन तो 1516 में आ गए, लेकिन जीव गोस्वामी 1541 में आए, लेकिन सबसे लास्ट में आए, लेकिन सबसे लास्ट तक वो रहे और 1605 तक उन्होंने अपनी लीला, 1605 या 1607 तक उनकी लीला चली। और इन सभी गोस्वामियों ने जो आधारशिला स्थापित की वृंदावन के पुनर्निर्माण के लिए, उसको एक प्रशासनिक रूप दिया जीव गोस्वामी ने। तो इसलिए जीव गोस्वामी ने इन सभी गोस्वामियों के द्वारा किए गए सभी कार्यों को लेकर, और दूसरे नंबर पर सबसे अधिक जो योगदान दिया वृंदावन के इस रूप निर्माण में, वो थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। भले उनका नाम इतना नहीं आता और हम लोग सब हर मंदिर को अलग अलग गोस्वामियों के नाम से उन विग्रहों को जोड़ते हैं, लेकिन उन गोस्वामियों का, उन अभी के जो मंदिरों का दर्शन हम कर रहे हैं, उन मंदिरों के निर्माण के साथ इतना संबंध नहीं था जितना रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का था। क्योंकि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे मान सिंह और उनके माध्यम से उन्होंने ये सब कार्य करवाया। तो जीव गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की युगल जोड़ी मिलकर पुनर्निर्माण का कार्य स्थापित किए, और रूप और सनातन ने ग्रंथों को प्रस्तुत किया, रघुनाथ दास गोस्वामी ने महाप्रभु के तिरुभाव के पश्चात अर्थात 1534 के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी आए, और उसके बाद आकर उन्होंने महाप्रभु ने क्या क्या लीलाएँ की उसके विषय में प्रतिदिन भक्त लोगों को राधा कुंड के तट पर कथा सुनाते थे, है ना। चैतन्य लीला रत्नसार स्वरूपेर भंडार तेहोठुला रघुनाथेर कंठे ताहा किच्छु ये शिनिलु ताहा यहाँ विस्तरिलु भक्तगण दिलु यही भेटे। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी की योगदान थी कि उन्होंने महाप्रभु के उन लीलाओं को प्रस्तुत किया और राधा कुंड में आकर किस प्रकार से वैराग्य का प्रदर्शन करके भक्ति करनी है वो प्रस्तुत किया। तो इस पार्श्वभूमि के साथ हम ये लीला देखते हैं जो कि अंत लीला में आती है। सनातन गोस्वामी अब बीमार होकर, विचित्र प्रकार की बीमारी धारण करके अब जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के और हरिदास ठाकुर के पास आ रहे हैं, लेकिन अपने उस वर्तमान दुर्दशा को देखकर सनातन गोस्वामी के मन में एक विचार उत्पन्न होता है कि भक्त का कर्तव्य होता है कि वो भक्ति करे, सेवा करे, और यदि मेरा ये देह, ये शरीर सेवा के योग्य नहीं तो क्या लाभ, तो इसको समाप्त कर देना ही अच्छा है। तो सनातन गोस्वामी ने मानसिक रूप से संकल्प कर लिया था कि जब रथ यात्रा होगी तो मैं जगन्नाथ जी के पहिए के सामने छलांग मारकर अपने देह को समाप्त कर दूंगा। तो अब वो आए थे, चैतन्य महाप्रभु से मिले, ठाकुर हरिदास के सिद्ध बकुल में महाप्रभु दोनों को मिलकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त किए, और तब सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु को उनके भाई अनुपम, उनके तिरुभाव के विषय में समाचार दिया और उसके राम भक्ति की महिमा का वर्णन किया, और महाप्रभु इन सब बातों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। और तब चैतन्य महाप्रभु कुछ एक दो दिन के पश्चात जब फिर हरिदास ठाकुर के पास आए, तब सनातन गोस्वामी वहाँ पर थे। तब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को अकस्मात बिना प्रश्न किए कहने लगे, भक्ति बिना कृष्ण कभू नहे प्रेमोदय, प्रेम बिना कृष्ण प्राप्ति होए अन्योदय। तो महाप्रभु कहते हैं कि सनातन, मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हो रहा है, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सनातन ने कहा, बताइए। महाप्रभु ने कहा, भक्ति बिना कृष्ण कभू नहे प्रेमोदय, बिना भक्ति के कृष्ण हमारे मन में कभी प्रेम की उत्पत्ति नहीं करेंगे। कृष्ण कभू नहे प्रेमोदय, और प्रेम बिना कृष्ण प्राप्ति अन्य होते नहीं, और जब तक कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होती तब तक हम भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकते। भगवान को संतुष्ट करना हो तो केवल प्रेम के माध्यम से। और फिर वो श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद से इंगित करते हैं, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्यायस तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जित। कि मैं तप से, दान से, यज्ञ से, योग से, अन्य विभिन्न प्रकार के भौतिक पराक्रम और कलाओं से वशीभूत नहीं होता जैसे भक्ति से। यथा भक्तिर ममोर्जित, श्रीमद् भागवत का बड़ा ही प्रभावशाली श्लोक है, बड़ा ही सिद्धांत पोषक श्लोक है, जो आचार्यों के द्वारा बारंबार टीकाओं में भक्ति की महिमा को सिद्ध करने के लिए विभिन्न टीकाओं में उपयोग किया जाता है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट रूप से सनातन गोस्वामी को कहते हैं, देह त्यागादि तमो धर्म पातक कारण, साधक न पाए ताते कृष्णिर चरण। कहते हैं सनातन, ऐसा सुनने में आया है कि देह त्यागादि तमो धर्म, कि जो व्यक्ति अपने ही देह को त्याग करने के लिए आत्महत्या इत्यादि का विचार करे, तमो धर्म के अंतर्गत आता है, और पातक कारण, मृत्यु के पश्चात ऐसा व्यक्ति नरक में भी प्रवेश कर सकता है। इसलिए साधक न पाए ताते कृष्णिर चरण, साधक को, साधक से अपेक्षा की जाती है कि वो ऐसा न करे, क्योंकि ऐसा करने पर साधक न पाए, वो प्राप्त नहीं कर पाएगा क्या? ताते कृष्णेर चरण, कृष्ण के चरणों को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है तो ये उचित मार्ग नहीं है। और तब श्री चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं, कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन, औचिरात पाबे तोबे कृष्णेर चरण। सनातन, अपनी कुबुद्धि छोड़ो, कुबुद्धि छाड़िया, और इस कुबुद्धि को छोड़कर कर श्रवण कीर्तन, केवल श्रवण और कीर्तन करो। बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश है। सनातन गोस्वामी के मन में उस कुबुद्धि का स्रोत क्या था? सनातन गोस्वामी ने देखा कि मेरे पूर्व कर्म के अनुसार मुझे स्वस्थ शरीर, कुशाग्र बुद्धि, विभिन्न भाषाओं के ऊपर निपुणता, इस प्रकार का राजसी वैभव का अनुभव, इतना सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ है, लेकिन इस कुत्सित बीमारी से युक्त देह को लेकर मेरे सभी सेवाओं की योजनाएं निष्क्रिय हो गई हैं। तो इसलिए अगर मैं इस शरीर जो कि हर प्रकार के कला के आधारशिला है, स्रोत है, सारी कलाएं, सारी शक्तियां जो मेरे इस शरीर के अंदर समाविष्ट हैं, ये शरीर वो माध्यम है जिसके माध्यम से मैं भगवान के प्रति भक्ति व्यक्त कर सकता हूं, अगर यही किसी काम का नहीं तो ऐसे कुत्सित अवस्था में इस शरीर को धारण करके मैं क्या करूंगा? अर्थात ये शरीर ही तो भक्ति का मूल साधन है। महाप्रभु कहते हैं सत्यानाश हो इस प्रकार के विचारधारा को। भक्ति के लिए मूल साधन स्वस्थ शरीर नहीं, भक्ति के लिए मूल साधन है श्रवण और कीर्तन। पूर्व कर्मों के आधार पर प्राप्त किए अपने कलाओं पर अभिमान और गर्व करना भक्ति के प्रतिकूल है, और इसलिए भगवान अपनी योजना के अनुसार कुछ समय के लिए हो सकता है उन कलाओं का उपयोग करने दें, और भले हम उन कलाओं को भगवान के सेवा में प्रयोग भी कर लें तो हाँ उन कलाओं को प्रयोग करने का संतोष होगा, लेकिन इसका गारंटी नहीं कि उन कलाओं के प्रयोग से भगवान संतुष्ट होंगे। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, और महाप्रभु ने इस बात को सिद्ध किया कि प्रतापरुद्र महाराज को अपने राजसी सत्ता वैभव शक्ति और राजनीति के प्रभाव से महाप्रभु संतुष्ट होने के लिए तैयार नहीं थे। तलवार छोड़कर जब हाथ में झाड़ू पकड़ा तब महाप्रभु ने कहा हाँ ये अपना आदमी है। तो इसको सुनकर हमारी सामान्य विचारधारा भ्रमित हो जाएगी, क्योंकि हमेशा हम लोग यही सुनते आए हैं कि भाई कुछ करना है तो फिर कुछ कलाओं का प्रदर्शन करो, तब तो फिर कुछ कर सकते हो। एदेक चैतन्य कृपा महाबल, अनुसंधान विना तारक रहे सफल। तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा बल है। तो इसलिए भक्ति में जो भौतिक जीवन में जो भौतिक जीवन में चलायमान सिद्धांत हैं और प्रचलित तत्व हैं, उनका बड़े खतरनाक ढंग से खंडन किया गया है, और महाप्रभु ने अपने विभिन्न लीलाओं के माध्यम से वज्र चलाकर इन सभी भ्रमित भ्रामक विचारधाराओं के पर्वत राशि को चूर्ण कर दिया है। तो इसलिए यहाँ पर महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं प्रतापरुद्र महाराज की लीला हो या सनातन गोस्वामी की ये लीला हो, कि भौतिक जगत में आप अपने भौतिक शक्तियों का, कलाओं का, सत्ताओं का पूर्व कर्म के आधार पर प्राप्त जो कुछ भी आपके पुण्य हो उनको प्रस्तुत करके आपको इस जगत से प्रतिकार, प्रतिसार, आदान प्रदान प्राप्त होता है, पुरस्कार प्राप्त होता है। लेकिन भगवान के दरबार में इन सभी कलाओं के प्रदर्शन से कुछ नहीं, केवल भगवान के लीलाओं का श्रवण करो, उनके प्रति आकर्षित होकर कीर्तन करो, अर्थात केवल ये याचना करो मुझे अपनी सेवा में लगाओ, मुझे आपको संतुष्ट करने का अवसर दो, और जितनी विनम्रता से, जितनी सहनशीलता से, जितने भगवान को प्रसन्न करने के लालच से और जितने अभिमान विहीन भावना से हम उसे भगवान के चरणों में प्रस्तुत करेंगे, भगवान उसको अर्थ मानते हैं, अन्य सभी प्रस्तुतिकरण को अनर्थ मानते हैं। उस अर्थ को लेकर भगवान देखते हैं नोट सही है क्या, ओरिजिनल है, ठीक है, फिर उसके बदले में प्रेम का एक छोटा सा बूंद देते हैं और धीरे धीरे करके वो हमारे कोटि कोटि जन्मों से खाली हृदय के जो बर्तन को फिर अपने प्रेम से भरने लगते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका शरीर पूर्व की भांति स्वस्थ नहीं रहा तो क्या हुआ, कुबुद्धि छाड़िया, तुमको क्या लगता है तुम्हारे पराक्रम के प्रदर्शन से मैं आकर्षित होता हूं क्या, तुम अपना पराक्रम दिखाओ अपने संतोष के लिए, भौतिकवादी बुद्धि से युक्त लोगों के संतोष के लिए, लेकिन मुझे इंप्रेस करना है, श्रवण कीर्तन कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन, जब तक श्रवण कर सकते हो और कीर्तन कर सकते हो और अंतिम श्वास लेने तक मेरा स्मरण कर सकते हो, मैं उससे संतुष्ट होता हूँ भैया, मैं दूसरा तत्व हूँ इस जगत का, भौतिकवादी कोई तत्व नहीं हूँ, मेरा नाम कृष्ण है। तो इसलिए मुझे संतुष्ट करने की प्रक्रिया को भलीभांति समझो, कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन। इसीलिए सनातन और रूप गोस्वामी ने महाप्रभु से आदेश प्राप्त किया कि वृंदावन का पुनर्निर्माण करो, मंदिरों की स्थापना करो, ये करो वो करो, और सबसे पहला काम किया कि सात बड़े बड़े नौका जिसमें सोने के बड़े बड़े ईंट थे, सोने के ईंट भरकर सात नौका उन्होंने दान में दिया और खाली हाथ चले, और जितने वर्ष वो रहे उस समय लगभग उन्होंने इतना कुछ विशेष मंदिरों को अपने सामने आते हुए नहीं देखा, वो पहले 20 वर्ष तो केवल ग्रंथ ही लिख रहे थे, क्योंकि वो जान रहे थे कि भगवान को संतुष्ट करना हो तो सबसे पहले चेतना से, हम हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत आंदोलन, उस भावना से हम संतुष्ट करते हैं, कॉन्शियसनेस। तो इसलिए जब तक भावना तैयार न हो केवल भवन बना के क्या होगा। इसलिए रूप और सनातन ने अपने भावना की नक्काशी की, और अपने भावना पर नक्काशी करते करते उन्होंने कई वर्ष बिताए, और जब उनको लगा कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमने जो उचित श्रेष्ठ भावना है उस भावना की रूपरेखा तैयार कर दी, तब फिर भवन बनाने का कार्य रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी इत्यादि के हाथ में सौंप दिया। इसलिए कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन, अचिरात पाबे तबे कृष्णेर चरण, बहुत शीघ्र आप कृष्ण के चरणों को प्राप्त कर लोगे, क्योंकि जब उचित प्रकार से श्रवण और कीर्तन करोगे तो आपकी भावना तैयार होती है, वो हरिनाम औजार के रूप में आकर हमारे पाषाण हृदय पर वार कर करके धीरे धीरे एक उचित रूप तैयार करता है जो भगवान को संतुष्ट कर सके। नीच जाति नहे कृष्ण भजने अयोग्य, षट कुल विप्र नहे भजने र योग्य। महाप्रभु कहते हैं, सामान्यतया भौतिक जगत में लोगों की भ्रांत धारणा है कि हो सकता है उच्च कोटि के पांडित्य से, उच्च कोटि के व्याकरण के ज्ञान से, श्रेष्ठ प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ शुद्धता इत्यादि के प्रदर्शन से भगवान संतुष्ट होते हैं, इसलिए हो सकता है समाज में ये अपभ्रांत धारणा हो कि भगवत भक्ति तो ब्राह्मणों की जागीर है। तो महाप्रभु कहते नहीं, नीच जाति नहीं कृष्ण भजने अयोग्य। अगर कोई नीच जाति में जन्म लिया है, कृष्ण भजने अयोग्य, वो कृष्ण भजन के लिए वो अयोग्य नहीं है। और सतकुल विप्र नहे भजनेर योग्य, और ऐसा नहीं कि उच्च कुल में कोई जन्म लिया विप्र वो भजन के लिए योग्य हो गया, नहीं, जन्म का इससे कोई संबंध नहीं। सन्यासी पंडित गुणेर कोरिते गर्वनाश, नीच शूद्र द्वारा कोरे धर्मेर प्रकाश। तो महाप्रभु प्रकट हुए सन्यासी और पंडित लोगों के गर्व को चूर चूर करके, नीच शूद्र द्वारा करें धर्मेर प्रकाश, और उनके द्वारा धर्म का प्रकाशन करने। इसलिए हरिदास द्वारा नाम महात्म्य प्रकाश, सनातन द्वारा भक्ति सिद्धांत विलास। इसलिए ठाकुर हरिदास के माध्यम से महाप्रभु ने नाम के महिमा का प्रचार किया, और सनातन गोस्वामी उनके माध्यम से भक्ति सिद्धांत को प्रकाशित किया। श्री रूपेर द्वारा ब्रजेर प्रेम रस लीला के बुझीते पारे चैतन्य चंद्रेर खेला। महाप्रभु के खेल को कौन समझ सकता है। रूप गोस्वामी के द्वारा उन्होंने ब्रज की महिमा को प्रकाशित किया। तो इसलिए रूप और सनातन को भी नीच जाति के जो श्रेणी में महाप्रभु स्वीकार करते हैं, क्योंकि उस समय रूप और सनातन, क्योंकि नवाब हुसैन शाह के चाकरी में समय बिताया, तो वो अपना वेशभूषा दिन भर का जब वो दरबार में जाते तो मुसलमानों के जैसा ही वेशभूषा धारण करते थे, वैसे ही उनकी वेशभूषा थी, उनका नाम भी वैसा ही था। इसलिए हिंदू समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया था, भले ही ओरिजिनली वो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। फिर महाप्रभु अब सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि भाई, जय भजे से ही बड़ा अभक्त हीन छार, कृष्ण भजने ना है जाति कुलादि विचार। समाज का हर व्यक्ति इस सिद्धांत को समझ ले, जय भजे, जो कृष्ण का भजन करेगा, सही बड़ा, मेरे दृष्टि में वो बड़ा है, अभक्तहीन छार। और अगर कोई व्यक्ति हीन हो, छार हो, क्योंकि वो अभक्त है, अगर वो अभक्त है तो मैं उसको हीन मानता हूं। जय भजे, अगर वो भजन कर रहा है तो वो बड़ा है। तो मेरे दृष्टिकोण से श्रेष्ठ कौन और निकृष्ट कौन, जो भजन करे, श्रवण कीर्तन में अपनी निष्ठा स्थापित करे, जो मेरे चरणों के प्रति निष्ठावान हो, वो बड़ा। जय भजे सही बड़ा, और अभक्त हीन छार, अगर वो अभक्त है, वो हीन है, तिरस्कृत है, मेरे हृदय में प्रवेश द्वार बंद पाएगा, वो प्रविष्ट नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं कृष्ण भजने नाही जाति कुलादि विचार। कृष्ण के भजन में जाति कुल इत्यादि का कोई विचार नहीं। और इसलिए अगर कोई ऐसी त्वचा का रोग हो गया जिसके कारण समाज आपको अस्पृश्य सिद्ध करके घोषित करके समाज से बहिष्कार भी कर दे, कृष्ण भजने नाही जाति कुलादि विचार, कृष्ण भजन में जाति कुल इत्यादि का कोई विचार नहीं होता। इसलिए अपने पूर्व कर्मों के शक्ति से संचित पुण्यों का फल अगर आप खो भी दो, धनवान व्यक्ति अगर निर्धन हो जाए, रूपवान व्यक्ति कुरूप हो जाए, बुद्धिमान व्यक्ति को अल्जाइमर्स होकर वो अपनी स्मरण शक्ति खो बैठे, बहुत ही सत्ताधारी व्यक्ति अब अपनी सत्ता को खो बैठे, चाहे कोई भी ऐश्वर्य के कारण समाज आपका सम्मान करता हो, और यदि काल के प्रभाव से यदि क्षण भर में आपके वो सारे ऐश्वर्य समाप्त हो जाएं, लेकिन आपके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति श्रद्धा, आपके मन में भगवान के रूप गुण लीलाओं का स्मरण, और आपके जिह्वा पर भगवान का नाम और आपके कर्णरंध्रों के भीतर हरिनाम और हरिकथा का प्रवेश हो, कृष्ण भजने नाही जाति कुलादि विचार, तो ऐसा व्यक्ति भले सामाजिक दृष्टि से तिरस्कृत हो जाए, लेकिन मेरे हृदय में वो नमस्कृत होता है। इसलिए भौतिक बुद्धि से आप अपना विचार मत करो। दीने रे अधिक दया कोरे भगवान, कुलीन पंडित धनीर बड़ भाग्यवान। तो महाप्रभु कहते हैं सनातन, वास्तव में अपने कुछ भौतिक आभूषणों को त्यागना, भले आपने स्वेच्छा से त्यागा हो या काल के बलिष्ठ भुजाओं ने आपसे उसे आपके इच्छा के विपरीत छीन लिया हो, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन आपसे आपकी भौतिक ऐश्वर्य छीन ली गई हो, उसके कारण आपके मन में एक बहुत भक्ति के लिए सकारात्मक परिवेश तैयार होता है। किसका? नम्रता का, है कि नहीं? दीनेर आपको लगने लगता है अरे मैं तो यूजलेस हूं, दीन हो गया, पहले जिस कारण से लोग मेरा सम्मान करते थे अब तो वैसा सम्मान मुझे प्राप्त नहीं हो रहा, अपमान कर रहे हैं लोग, पहले धनवान था तो सम्मान करते थे, अब मैं कंगाल हो गया तो सब कोई देख भी नहीं रहा, पहले मैं लोगों को अपने वाणी से प्रभावित कर सकता था, वो शक्ति छीन ली गई, अब सम्मान के लिए कोई कारण नहीं बचा, अरे मेरे रूप के कारण लोग मेरा सम्मान करते थे, अब वृद्धावस्था के कारण या अन्य किसी कारणवश अब वो रूप नष्ट हो गया, भगवान के काल शक्ति ने उसका बलात्कार कर दिया, अब मैं क्या करूं? तो चाहे किसी भी कारणवश वो नष्ट हो जाए, लेकिन उसका प्रभाव मन में दीनता वो भक्ति के लिए अनुकूल है। दीने रे अधिक दया कोरे भगवान, और वो परिवेश भगवान को बड़ा आकर्षक लगता है। कुलीन पंडित धनिर बड़ा अभिमान, जो व्यक्ति कुलीन होता है, अच्छे कुल में जन्म लेता है, जिसके कारण उसकी शिक्षा संस्कार और विभिन्न प्रकार के दूसरे जन्म से संबंधित स्वाभाविक लाभ होते हैं, उसके कारण अभिमान हो सकता है। पंडित कोई हो, वाक्पटुता, कुशाग्र बुद्धि, स्मरण शक्ति, भाषाओं के ऊपर निपुणता इत्यादि के कारण उसका अभिमान, वो अभिमान मेरे और उस भक्त के बीच में एक विशालकाय गगनचुंबी दीवार के रूप में सिद्ध होती है। धनीर और उस धन के कारण यदि उस व्यक्ति को लगे, अरे भगवान तो मैं जब धन फेंकता हूँ तब जाकर भगवान की आरती हो सकती है, तब तो भगवान वस्त्र भी पहन सकते हैं, मैं जब तक इनके दरबार में जाकर धन नहीं फेंकूंगा तब तक भगवान वस्त्र भी कहाँ से पहनेंगे। अगर उस धन के कारण अभिमान हो तो ये वास्तव में मेरी भक्ति के लिए अनुकूल नहीं, मैं उस व्यक्ति से असंतुष्ट रहता हूँ। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं कि देखिए सनातन, आपको जाकर वृंदावन में इन सभी बातों को लिखना है, क्योंकि मैंने तो कृष्ण प्रेम में किस तरह के अनुभव होते हैं वो प्रदर्शित कर दिए, लेकिन अनर्थ से युक्त हृदय इस स्तर तक कैसे पहुँचे, वो भजन के प्रक्रिया, भक्ति का सिद्धांत क्या है, भजन क्या है, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविदा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धोरे महाशक्ति। देखिए ये केवल भजन के माध्यम से ही आप मुझे सिद्ध कर सकते हो, संतुष्ट कर सकते हो, और भजन किसी भी शारीरिक अवस्था में, भौतिक अवस्था में की जा सकती है। उसमें श्रेष्ठ क्या है, नवविदा भक्ति, और ये नवविदा भक्ति के विषय में आप दोनों भाई विस्तृत वर्णन कीजिए। कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धोरे महाशक्ति, और इस नवविदा भक्ति के अंदर कृष्ण प्रेम और कृष्ण को प्रदान करने की महान शक्ति है, और इस नवविदा भक्ति के बीच में क्या श्रेष्ठ है, तार मध्य श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, इन सभी के बीच सर्वश्रेष्ठ क्या है, नाम संकीर्तन, लेकिन ये नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। निरपराध रूप से जब हम ये नाम जपेंगे तब हम प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु एतत् निर्विद्यमानानां चित्तां कुतो भयं योगिनां नृप निर्णीतं हरेर नामानुकीर्तनम् इत्यादि ये सब वर्णन करके सनातन गोस्वामी के हतोत्साहित भाव को फिर उत्साहवर्धक करते हैं कि देखिए हाँ, आपके मन में उत्साह क्षीण हुआ है, लेकिन आपको इस प्रकार हतोत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, हो सकता है आपके जीवन में, साधक के जीवन में स्वास्थ्य का नाश हो, ऐश्वर्यों का नाश हो, धन का नाश हो, हो सकता है कुछ संबंधों में स्खलन आ जाए, हो सकता है संपत्ति का नाश हो सकता है सम्मान का नाश हो, ये सभी नाश होने पर हे सनातन, साधक को कभी भी अपनी आशा का नाश होने नहीं देना चाहिए। और ये श्री चैतन्य महाप्रभु का सनातन गोस्वामी के लिए सबसे महत्वपूर्ण निर्देश था कि आप अपनी आशा को समाप्त मत कीजिए, इच्छा को समाप्त मत कीजिए, क्योंकि मुझे जीतने के लिए केवल सकारात्मक इच्छा शक्ति ही पर्याप्त है। उस इच्छा शक्ति के माध्यम से अगर आप अपने बचे हुई शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक शक्ति को श्रवण कीर्तन में लगाकर स्मरण करोगे, मैं उससे संतुष्ट हो जाता हूँ। तो इसलिए आप किस बात से हतोत्साहित हो रहे हो कि आपको त्वचा का रोग हो गया, शरीर लगभग नष्ट हो रहा है, शरीर जर्जर हो गया। इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतत्यवश्यम शतसंधि जर्जरम किम औषधम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसामयम पिब। इसीलिए सनातन आप अपने उत्साह को नष्ट मत कीजिए। तो सनातन गोस्वामी तब कहते हैं, सर्वज्ञ कृपालु तुमि ईश्वर स्वतंत्र जय छे न छाओ तय छे नाछी जेन काष्ठ यंत्र। सनातन गोस्वामी विस्मित हो गए कि अरे मैंने तो बताया नहीं इनको कि मेरा प्लान क्या था, मैंने अपनी योजना इनके सामने प्रस्तुत नहीं की थी। यहाँ तक कि ऐसा नहीं कि हरिदास ठाकुर को मैंने आके कान में बता दिया था, मैंने न ठाकुर हरिदास को बताया, न महाप्रभु को बताया या अन्य किसी भक्त को बताया। मुझे तो लगा कि ये बड़ी गोपनीय बात है, महाप्रभु इस बात को भांप गए। सर्वज्ञ, अरे महाप्रभु क्या सनातन खुद वैसे ही थे? और सनातन का संपर्क नवाब हुसैन शाह के साथ उनके इस गुण से हुआ कि सनातन गोस्वामी की सबसे बड़ी कला थी सामने वाले व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसके मन का जो जो भाव था वो सीधा यूएसबी में ले लेते थे। ये उनकी सबसे बड़ी कला थी। वो इसके लिए रुकते नहीं थे कि सामने वाला कुछ बोले, और सही बात पकड़ते थे, ये नहीं कि उल्टा पुल्टा कुछ सोच लेते थे। तो नवाब हुसैन शाह ने अपना बड़ा डॉक्टर नरेंद्र जाना करके एक स्कॉलर हैं, उन्होंने एक अपना स्टोरी सुनाया अपने बुक में कि नवाब हुसैन शाह ने रामकेले में बहुत बड़ा महल बनवाया और जो मिस्त्री था उसका नाम था पीलू मिस्त्री, तो पीरू मिस्त्री ने बनाया था और नवाब हुसैन शाह को पूरा टूर दे रहा था बनाने के बाद। और सबसे टॉप फ्लोर पे जाने के बाद नवाब हुसैन शाह ने उसका पीठ थपथपा के कह रहा, अरे पीरू मिस्त्री क्या काम किया, क्या कलाकारी है, क्या महल बनाया। तो पीरू मिस्त्री ने कहा, अरे ये तो कुछ भी नहीं, मेरी कलाकारी तो ऐसे है कि इससे 10 गुना अच्छा और बना सकता हूँ। नवाब हुसैन शाह ने अपना तलवार निकाल के उसके गले में रखा कि नालायक, मेरे लिए नंबर वन नहीं बनाया गया, 10 गुना अच्छा और किसी राजा के लिए बचा के रखा है क्या? अभी तुमको ख़त्म कर दूंगा, बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है। नवाब हुसैन शाह ऐसे थे, है कि नहीं? जब किसी के साथ बाताबाती हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो नवाब हुसैन शाह को याद कर लेना कि भाई ऐसे व्यक्ति के साथ रहते तो क्या होता। नवाब हुसैन शाह ने बोला, अंतिम इच्छा क्या? बोला, ठीक है मैं तो मरने ही वाला हूँ, लेकिन ये महल जो है मेरे नाम पे रख दो। तो उसका नाम पड़ गया पीरू महल। फिर नवाब हुसैन शाह ने उसका सर काट के उसको उठा के वहां से फेंक दिया नीचे। फिर बगल में उनके एक मंत्री थे, उनका नाम था हिंगा, उनको कहा अब बचा हुआ जितना। तो हिंगा को देख के बोले, हिंगा अभी बहुत महत्वपूर्ण काम है, तुरंत मोरा ग्राम जाना है। हिंगा बोले, ठीक है। और इतना बोलने के बाद अचानक दूसरा कोई व्यक्ति आकर नवाब हुसैन शाह से बात करने लगा और नवाब हुसैन उसके उसमें पूरा बिजी हो गए और ये हिंगा को आगे कुछ बताया नहीं और नवाब वहाँ से चला गया। तो हिंगा सोचता था, अरे मोराग्राम जाने को बताया लेकिन मोराग्राम में करूँ क्या? और हिंगा ने सोचा कि जाके पूछूंगा तो शायद मेरा भी सर काट देगा, तो इसलिए मैं क्या करूँ, तो बचने के लिए जाके तो आता हूँ, कम से कम घूम के आ जाऊँगा, भले समझे नहीं समझे। तो वहाँ से गया मोराग्राम, मोराग्राम में गए और घूम रहे थे या वहाँ परेशान होकर वहाँ सनातन गोस्वामी घूम रहे थे। तो इनको देखकर बोला, अरे परेशान लग रहे हो, क्या बात है? तो बोले, हाँ नवाब हुसैन ने मुझे कहा मोराग्राम जाओ। तो बोले, कहाँ कहाँ कैसे कहा? तो पूरा बताया स्टोरी, हम लोग पैलेस पे थे, ऊपर गए और मिस्त्री को मार दिया, उसके बाद मुझे देख के बोले मोराग्राम जाओ, और फिर मैं कुछ समझा नहीं क्योंकि आगे कुछ बोला नहीं। तो सनातन गोस्वामी हंसने लगे। तो बोले, देखो मोराग्राम में 6-7 मिस्त्री आपको मैं देता हूँ, सबसे बेस्ट यहाँ के, उनको लेके जाओ, नवाब खुश हो जाएगा। तो हिंगा बोला आपको कन्फर्म है क्या, यही काम था, आप तो थे भी नहीं, आपको कैसे बताओ। उन्होंने बताया क्या, नहीं नहीं आप लेके जाओ कुछ नहीं होगा, मेरा गारंटी है। तो बोले आपको पता नहीं वो नवाब कैसा है, अगर एक भी गलत कुछ शब्द बोल दिया, गलत कदम कुछ ले लिया तो ख़त्म कर देगा। तो सनातन ने कहा रहे मैं इंश्योरेंस देता हूँ ना बाबा, जाओ मेरे गारंटी पर जाओ लेके जाओ। तो 5-7 मिस्त्री दे दिए, लेके गए, और जैसे नवाब मिस्त्रियों को देखता है, हिंगा को बोलता अरे मैं तो तुमको बोलना भूल गया था मोराग्राम क्यों जाओ, लेकिन कैसे पता लगाया। तो हिंगा ने कहा रे वो एक आदमी मिल गया मुझे, उसने ऐसा ऐसा बताया। तो नवाब ने कहा कौन था वो, लेके आओ, मुझे ऐसा ही व्यक्ति अपने प्रधानमंत्री के रूप में चाहिए, क्योंकि मैं इतना बिजी रहता हूँ कि हर काम में बता नहीं सकता, बिना बताए जो मेरी बात समझ जाए वो पूरे बंगाल का प्रशासन करेगा, और मैं जाके बंगाल के बाउंड्री को और बढ़ाऊंगा आक्रमण कर करके। तब जाकर सनातन गोस्वामी को प्रधानमंत्री बनाया, और इस डर से कि अगर आप नहीं स्वीकार करोगे हिंदुओं का मैं अत्याचार करूंगा, तब इसलिए ज़बरदस्ती फिर सनातन गोस्वामी को वहाँ बनना पड़ा। इसलिए उनकी एक कला थी, वो बिना बताए केवल चेहरा देख कर भांप जाते थे, और वैसे ही फिर जब भागते समय वो होटल में आए और वहाँ के मालिक को देखा, वो बड़ी चिकनी चिकनी बातें कर रहा था, अतिभक्ति चोरेर लक्षण, तो उस बात को देखकर वो समझ गए इसके मन में कुछ तो है, और फिर उन्होंने जांच पड़ताल की, और इसी का उन्होंने प्रयोग किया वृंदावन में भी आगे चलकर, कि उस समय ब्रजवासियों के साथ संबंध स्थापित कर करके वो अपनी समस्या बताने के पहले वो समझ जाते थे और उनको सकारात्मक संबोधन करते थे। तो इसलिए यहाँ पर वो कह रहे हैं सर्वज्ञ भगवान आप सब कुछ समझ गए, मेरे मन में क्या चल रहा वो भी समझ गए, जैचन अच्छा हो तैचन अच्छी। ठीक है आपको लगता है कि मैं इस वर्तमान कुत्सित अवस्था में भी कुछ सेवा कर सकता हूँ, नचाओ हमें। नीच अधम पामर मुई पामर स्वभाव मोरे जिया ले तो माँ किबा हो बेलाभ। जहाँ तक मैंने अपने विषय में अपने वर्तमान स्थिति का कैलकुलेशन किया है, एनालिसिस किया है, मूल्यांकन किया है, नीच हूँ अधम हूँ पामर स्वभाव मोरे जिया ले मैं जीकर मुझे जीवित रखकर तुमार किबा हो बेलाभ मैं आपका क्या लाभ कर सकता हूँ। अर्थात महाप्रभु प्रदर्शन कर रहे हैं कि साधक के मन में श्रेष्ठ अव्वल दर्जे की शिक्षा सुनने के बाद भी मन में किस प्रकार का बवंडर उठेगा किस समय, ये कोई गारंटी नहीं कर सकता। कुछ समय पहले वाराणसी में आराम से बैठकर घाट पे बैठकर 2 महीना डायरेक्ट महाप्रभु के मुखारविंद से भक्ति तत्व क्या है डिटेल में सुना हुआ व्यक्ति, उसके दिमाग में सब फिलॉसफी भरा हुआ है, मन घूम गया। तो इसलिए कब अपना मन घूम जाए, और जब मन घूम जाए तब यही बैठी हुई सारी फिलॉसफी मन तक नहीं पहुंच पाती। उस बुद्धि में बैठे फिलॉसफी को मन तक पहुंचाने के लिए एक संदेशवाहक लगता है, वो है वैष्णव संग। अगर बिना वैष्णव संग के सब कुछ हो जाता तो सनातन गोस्वामी उस घाट में महाप्रभु से सारी फिलॉसफी सुन के हवा में उड़ते थे, और इस बीमारी को प्राप्त करके अपनी दुर्दशा को देखकर भी कहते थे अरे कोई बात नहीं, महाप्रभु ने तो हमको सारी फिलॉसफी दी है। तो हर प्रकार के फिलॉसफी से युक्त व्यक्ति भी कब किस क्षण भक्ति के यात्रा के किस मोड़ पर डगमगा जाए, भ्रमित हो जाए, इसका कोई गारंटी नहीं। इसीलिए हमेशा वैष्णव संग पर अवलंबन करना चाहिए, और इसीलिए अंत्यलीला के आरंभ में हमारे कविराज गोस्वामी श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण कहते हैं, दुर्गमे पति मे अंधस्य स्खलत पाद कतेर मुहु स्वकृपा यष्टि दानेन संतह संतु अवलंबनम। दुर्गमे, ये पथ बड़ा ही दुर्गम है, अंधस्य मैं अंधा हूँ, स्खलत पाद गतेर बारंबार फिसल रहा हूँ, हे वैष्णव स्वकृपा यष्टि दानेन अपनी कृपा की छड़ी हमें दो। संतह संतु अवलंबनम, संतों के अवलंबन को छोड़ के, वैष्णवों का आश्रय को छोड़कर अन्य दूसरा कोई आश्रय नहीं है। इसलिए ये कथा बड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सनातन गोस्वामी वैष्णव कृपा वैष्णव सत्संग पर अवलंबित थे, आश्रित थे, उस वैष्णव आश्रय पर उनकी श्रद्धा थी, इसलिए ब्रजभूमि वृंदावन में आकर वो सभी ब्रजवासियों को एकत्रित कर पाए, इस वैष्णव आश्रय की महिमा को उनके समक्ष प्रस्तुत कर सके। तब महाप्रभु कहते हैं कि बेटा, अगर हर व्यक्ति अपना बुद्धि और अपना दिमाग लगाकर समझ जाए कि वो मेरी भविष्य में किस प्रकार सेवा करने वाला है, तो फिर मेरी क्या आवश्यकता होगी, तो हर व्यक्ति ही ज्योतिषी बन जाएगा। तो इसलिए हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई महत्वपूर्ण सेवा हमने विचार करके रखा है, लेकिन वो सेवा मेरी ओर से उस भक्त के लिए भेंट है, तो इसलिए भेंट सही दिन पर सही समय पर दिया जाता है। भेंट को खरीदने की प्रक्रिया पहले हो जाती है, लेकिन जिस व्यक्ति के लिए वो भेंट हम गिफ्ट के रूप में दान के रूप में देते हैं, उस व्यक्ति को उस दिन उस सही समय पर सही परिवेश में जब दिया जाता है, तब वो भेंट को जब खोलता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। पाया जार आज्ञा धन ब्रजेर वैष्णवगण। इसलिए हर भक्त के लिए भगवान श्री कृष्ण सेवा रूपी भेंट लेकर खड़े हैं, लेकिन कब किस भक्त को किस समय कौन सी भेंट मिलेगी ये कह पाना कठिन है। और अपने भक्ति की यात्रा में अलग अलग समय पर भगवान हो सकता है अलग अलग भेंट भी दें, उसके लिए हमें केवल तैयारी रखनी है। तो इसलिए सनातन गोस्वामी इस समय सोच रहे हैं, मोरे जियाइले तुमा कीबा होवे लाभ, मैं जीवित रहकर आपका क्या लाभ होगा। अरे जिन्होंने ऐसा ऐतिहासिक काम किया वो सोच रहा है कि मैं कोई सेवा करने के लायक नहीं, क्योंकि काल के उस परिवेश में भगवान ने अपने काल रूपी जवनिका से उस भविष्य के भेंट को आवृत करके रखा है। तो जब भगवान अपनी इच्छा से काल रूपी जवनिका को खोलेंगे, दर्शन पट जब खुलेगा, तब दिखता है ओ भगवान ने मेरे लिए ये सेवा सोच के रखी थी, ओ हो। तो इसलिए सबसे बड़ा अत्याचार मनुष्य जीवन में क्या होगा कि वो काल की जवनिका भगवान की इच्छा के द्वारा खुलने से पूर्व हम अपना दिमाग लगाकर यू टर्न मारकर वहां से निकल जाएं, और जब वो पर्दा खुले, भेंट है, गिफ्ट वही है, गिफ्ट लेने वाला व्यक्ति गायब हो गया। इसलिए उत्साहान निश्चयात धैर्यात, धीरज के साथ प्रतीक्षा करनी है कब वो गिफ्ट मिलेगा। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे तोमार देह मोर निज धन, तुमि मोरे कोरिया छ आत्मसमर्पण। महाप्रभु कहते बेटा, गिफ्ट देने का काम मेरा है, छीनने का काम नहीं है तुम्हारा। गिफ्ट दिया जाता है, छीना नहीं जाता है। तो इसलिए तुम्हार देह, आपका शरीर मेरी संपत्ति है। तुम्हें मोरे करियाच आत्मसमर्पण, आपने आत्मसमर्पण कर लिया तो फिर उसके आगे वो मेरा निर्णय है कि कब, किस समय, किस परिस्थिति में आपके इस देह को मैं प्रयोग करूं। और इसलिए कहते हैं परेर द्रव्य तुमी केने चाह बिनाशिते धर्मा धर्म विचार की बा न पार कोरिते। अरे दूसरों की संपत्ति को नष्ट करने का आपने विचार कर लिया? आपका शरीर मेरा, मेरी संपत्ति है और सोच लिया मैं इस शरीर को नष्ट करूंगा? अरे प्रॉपर्टी मेरा है और तुमने बेचने का प्लान बना लिया और किसी को अपना वचन देकर एडवांस भी ले लिया। अरे पेपर तो अपने नाम पे भैया, ये कैसे हो सकता है? तोमार शरीर मोर प्रधान साधन ए शरीरे साधि मु आमी बहु प्रयोजन। महाप्रभु केवल सनातन को नहीं, हम सब यहां जो बैठे हैं उन सभी को ये संबोधन कर रहे हैं। तोमार शरीर मोर प्रधान साधन, आपका ये शरीर मेरा प्रधान साधन है। ए शरीरे साधि मु आमी बहु प्रयोजन, इस शरीर के माध्यम से मैं अपने कई सेवाओं को संपन्न करूंगा, बहु प्रयोजन। फिर आगे कहते हैं आपके शरीर के माध्यम से हे सनातन मैं 9 प्रकार के सेवाओं को संपन्न करना चाहता हूं। आपको लग रहा है मोरे जियाले तुमार किबा होबे लाभ, आपको जानना है, आपको धीरज नहीं है, चुपचाप बैठ नहीं सकते, सुनना है, ठीक है अभी बताता हूं। भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्वेर निर्धार वैष्णवेर कृत्य आर वैष्णव आचार। तो सबसे पहला सेवा आपके लिए क्या है? भक्त कौन है, भक्त तत्व को स्थापित करो, द डिवोटी प्रिंसिपल। दूसरा भक्ति तत्व, डिवोशनल सर्विस प्रिंसिपल, भक्ति के तत्व। तीसरा कृष्ण प्रेमेर, कृष्ण प्रेम तत्वेर निर्धार, कृष्ण प्रेम का तत्व। What is the principle of love of God? चौथा वैष्णवेर कृत्य, वैष्णवों के जो duties हैं, वैष्णवों के कर्तव्य, वैष्णवों के कर्तव्यों को निर्धारित करो। वैष्णवेर कृत्य आर वैष्णव आचार। और पांचवा वैष्णव आचार, द वैष्णवाज डीलिंग्स। छठा कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन लुप्त तीर्थ उद्धार आर वैराग्य शिक्षण। इस श्लोक में वो और 4 उनके जो सेवाएं हैं वो बता रहे हैं। छठा कृष्ण भक्ति क्या है, इस तत्व को स्थापित कीजिए। सातवां कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन, सेंटर्स फॉर कल्टीवेटिंग लव ऑफ कृष्णा, अर्थात कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम कैसे निकले, है कि नहीं? जैसे कोई गन्ने के जूस का मशीन होता है, उसका डिजाइन ऐसा होता है कि इस तरफ से गन्ना डालो उस तरफ से गन्ने का जूस निकलता है। तो इसलिए सभी के हृदय में कृष्ण प्रेम है, जैसे गन्ने के अंदर गन्ने का जूस है, लेकिन जब तक उसका मंथन नहीं होगा वो प्रेम निकलेगा कैसे?
तो ऐसे मंदिरों का निर्माण करो जो कि गन्ने के जूस के मशीन की तरह हर जीव जो वहाँ प्रवेश करे उसके हृदय के कृष्ण प्रेम के अमृत को स्थापित करे, निचोड़ कर निकाले। तो इसको कहते हैं कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन, सेंटर्स फॉर कल्टिवेटिंग लव ऑफ कृष्णा। दैट इज व्हाट अ टेम्पल इज, इट इज अ सेंटर फॉर कल्टिवेटिंग लव फॉर कृष्णा। और आठवां, लुप्त तीर्थ उद्धार, है कि नहीं, लुप्त तीर्थ उद्धार। और जो तीर्थ लुप्त हो गए हैं वृंदावन धाम में, उन तीर्थों का उद्धार करो, एक्सकवेट होली लॉस्ट होली प्लेसेस। तीर्थ हैं लेकिन लुप्त हैं। और नवा, और वैराग्य शिक्षण, टीच द प्रिंसिपल्स ऑफ रिनाउंस्ड ऑर्डर। वैराग्य क्या है इसका आप प्रदर्शन करो, शिक्षा दो आपके अपने आचरण से और शिक्षाओं से। What is the principle of renunciation? So therefore, Sanatan Goswami represents renunciation, the principle of renunciation. फिर आगे महाप्रभु कहते हैं दसवां, उनको एक सेवा देते हैं, टेंथ, निज प्रिय स्थान मोर मथुरा वृंदावन, ताहा एतत् धर्म चाही कोरिते प्रचारन। मथुरा वृंदावन मेरा अपना प्रिय स्थान है, इट इज माई पर्सनल फेवरेट। निज प्रिय स्थान मोर मथुरा वृंदावन, ये मथुरा वृंदावन निज मेरा अपना प्रिय स्थान है। तोह एत धर्म चाही कोरिते प्रचारन, मैं ये इन सभी नौ जो सेवाएं आपको मैंने दी हैं, द अबाउट लिस्ट ऑफ नाइन थिंग्स, ताहा आई वॉन्ट यू टू एस्टेब्लिश इट देयर। ताहा एत धर्म चाही कोरिते प्रचारन, वहां पे इसका प्रचार हो। तो सनातन गोस्वामी कह सकते प्रभो आप भी चलोगे ना, भारी काम दिया है, आपके बिना कैसे होगा, क्योंकि सेवा दिया है तो फिर आप भी साथ में रहोगे तभी हो पाएगा। महाप्रभु कहते हैं नहीं सनातन, मैं चल सकता था तो मैं तो आपको पुरी में नहीं मिलता, पुरी में मिल रहा हूँ मतलब किसी कारणवश मैं वहाँ नहीं रह पाया। क्यों, माता राज्ञाय आमी बोसी नीला चोले, ताहा धर्म शिखाई थे नाही निज बले। अगर हर व्यक्ति हर कार्य कर लेता तो इस सृष्टि में इतनी विविधता की आवश्यकता क्यों पड़ती। अगर किसी को लगता अरे ये इतने शक्तिशाली है, ये तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सृष्टि की रचना ऐसी हुई है कि शक्तिशाली और शक्तिहीन तथा कथित हर व्यक्ति की अपनी सेवा है। एक ग्राम के वजन से कम वाला कोरोना वायरस भी अपने काम में लगा हुआ है। अगर भारी लोगों का ही अगर काम होता तो फिर इनके लिए क्या होता। तो इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं मातार आज्ञाएं आमी, क्या करें, सच्ची माता के आदेश ने मेरी सीमा को बांध दिया है, मैं श्री क्षेत्र से आगे वहां नहीं जा सकता। आमी बोसी नीला चले, इसलिए मुझे यहीं बैठना है। ताहा धर्म शिखाई थे नाही निज बले, और ये सारी शिक्षाएं वहां पर, इन धर्म को वहां पर सिखाना मेरे बल में नहीं है, मेरी शक्ति में नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर सकता। ताहा धर्म शिखाई थे नाही निज बले, मेरी शक्ति नहीं मेरा बल नहीं, इसलिए आपको ही इस कार्य को संपन्न करना होगा। एत सब कर्म आमी जे देहे कोरिमु, ताहा छाड़ी ते ता चाह तुमी कैमोने सोहिमु। और मैंने ये सारा 10 सेवा आपके लिए सोच के रखा कि आप ब्रज में करोगे। एत सब कर्म अमी जे देहे करिमु, जिस देह के माध्यम से मैं करने का विचार किया था, ताहा छाड़ी ते चाह तुमी, उस शरीर को आप छोड़ने के लिए योजना बना के बैठे हो। कैमोने सहिमु, कैसे मैं सहन कर सकता हूँ, इसलिए मुझे हस्ताक्षेप करना पड़ा। तोबे सनातन कोहे तोमा के नमस्कारे, तोमार गंभीर हृदय के बुझीते पारे। प्रभो मान गया, तोमा के नमस्कारे, आपको मान ही गया कि हाँ आपने बहुत कुछ मेरे लिए सोच के रखा है। थोड़ा बहुत बोला भी था, लेकिन क्या करें, वर्तमान की जटिल जर्जर परिस्थितियों में बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति, सिद्धांत में पारंगत व्यक्ति भी अपने मन के बवंडर में फंस जाता है और अपने संचित कलाओं को भूल जाता है। इसलिए जब मन का बवंडर वेगवान हो तो उस मन के बवंडर को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए संपूर्ण वैष्णव संघ की सेना लगती है, तब जाकर उनकी कृपा से हम इसको रोक पाते हैं और सही दिशा प्राप्त कर पाते हैं। फिर सनातन कहते हैं, काष्ठेर पुतली जेन कुहा के न चाय, आपने न जानी पुतली की बा नाचे गाए। कहते हैं, प्रभो मैं अब आपके हाथों में काष्ठ की पुतली बन के नाचने के लिए तैयार हूँ, आपने न जाने पुतली की बा नाचे गाए। मैं नहीं जान सकता कि कैसे आप नचाओगे, मैं आपके हाथों में नाचने के लिए तैयार हूँ। इस भाव के साथ सनातन गोस्वामी महाप्रभु के द्वारा आलिंगित हुए, महाप्रभु ने उन्हें पुनर्स्वस्थ कर दिया और फिर सनातन गोस्वामी वृंदावन में सर्वप्रथम ब्रजवासियों को ब्रज की महिमा का वर्णन से अवगत ब्रज की महिमा का वर्णन करके उनको उस महिमा से अवगत कराया। ब्रजवासियों को धीरे धीरे उन्होंने संपूर्ण ब्रज भूमि को एक तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया और उसके लिए जो कुछ भी आवश्यक था, जैसे राजमंत्री रामानंद व्यवहारे निपुण, तो सनातन गोस्वामी की विशेषता क्या थी, व्यवहारे निपुण। व्यवहारे निपुण अर्थात हर व्यक्ति के मन की बात को भाप कर किस प्रकार क्या बोलना है, कैसे जोड़ना है, सब समझ कर वो संपूर्ण ब्रज के सबसे लोकप्रिय संत के रूप में उन्होंने ब्रज भूमि वृंदावन की महिमा को ब्रजवासियों के सामने प्रकाशित करने का जो कार्य किया, उसके कारण वो ब्रज के गुरु के रूप में स्वीकृत हुए और इसलिए उनके तिरोभाव के दिवस को एक दृष्टिकोण से गुरु पूर्णिमा के रूप में स्वीकार करते हुए ब्रजवासी उन्हें सम्मानित करते हैं। और गौड़ीय संप्रदाय में सनातन गोस्वामी हमारे प्रवर्तक आचार्यों में से श्रेष्ठ रहे। सबसे बड़े होकर महाप्रभु से 2 महीना उन्होंने शिक्षा ली, रूप गोस्वामी ने केवल 14 दिन। रूप गोस्वामी अनुज थे, लेकिन फिर भी हमारे संप्रदाय को रूपानुगा कहा जाता है। इस पे सनातन गोस्वामी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि यार बड़ा मैं हूँ, पहले प्रधानमंत्री मैं था, वित्त मंत्री तो वो था, 2 महीना मैंने बिताया, लेकिन संप्रदाय का नाम रूपानुगा, सनातन आनुगा नहीं। तो इसलिए सनातन गोस्वामी महाप्रभु के इस मिशन को वृंदावन में स्थापित करने के लिए और गौड़ीय संप्रदाय के जय पताका को सनातन काल के लिए फहराने में जो योगदान दिया, उस योगदान के लिए हम सभी वर्तमान साधक उनके दिव्य चरण कमलों में अपने मस्तक को धारण करते हुए विनम्र करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी कृपा हम पर हमेशा बनाए रखें, जिससे ये भक्ति सिद्धांत के दिव्य रत्न हमारे हृदय के भीतर पुनर्स्थापित हो, प्रकाशित हो, और उनके दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए हम श्री चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन को समझें, आस्वादन करें और दूसरों में वितरित करने में सफल हो सकें। परम पूज्य भक्त चारु स्वामी महाराज, इनके अचानक कल के निधन का समाचार सुनकर, तिरोभाव का समाचार सुनकर संपूर्ण इस्कॉन समाज उन्मूलन सदमे में है, और प्रभुपाद के इतने निकट, प्रभुपाद के इतने प्रिय शिष्य, जिन्होंने प्रभुपाद के अंतिम दिनों में किस प्रकार तन मन धन के साथ सेवा की, ऐसे वैष्णव का अचानक हम सभी के बीच से चले जाना संपूर्ण इस्कॉन और वैष्णव समाज के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है, बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि एक एक भक्त जो अपने भक्ति और अपने शक्ति से जो योगदान कर सकता है वो वही कर सकते हैं। कई बार मैं सोचता हूँ, जब कोई जटिल समस्या आती है या इस्कॉन के स्तर पर कोई ना कोई मतभेद चलता रहता है, कि आज अगर तमाल कृष्ण महाराज होते और आज भक्ति तीर्थ महाराज होते तो फिर ये सब जटिल विषय उनके साथ चर्चा करके एक दिशा और जो क्लैरिटी मिलती, कितना मजा आता। 52 वर्ष की आयु में तमाल कृष्ण महाराज चले गए, 55 वर्ष की आयु में भक्ति तीर्थ महाराज चले गए। तो हर भक्त का अपना एक विशेष योगदान होता है, और वो जो कर सकते हैं दूसरे नहीं कर सकते। इसलिए एक अनमोल हीरा हमारे बीच से अब, हमारे बीच में अब नहीं रहे, और हम केवल उनके दिए गए उदाहरण, उनके दिए गए मार्ग का स्मरण करके अपने डगमगाते भक्ति के जीवन को उस मार्ग पर बनाए रखने का कुछ तुच्छ प्रयास कर सकते हैं। उनके विषय में हम और विस्तृत रूप से आज संध्याकालीन सत्र में सनत कुमार प्रभु के, जो 5:30 बजे आरंभ होगा सत्र, उसके पश्चात फिर वो कुछ बोलेंगे, और फिर कुछ दो शब्द हम भी उनके स्मरण में व्यक्त करने का हम प्रयास करेंगे। श्रील भक्ति चारु स्वामी महाराज की, श्रील सनातन गोस्वामी पाद की, श्री गौरांग महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, इताय गौर प्रेमानंदे, वंशाकल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।